हरे कृष्ण। भक्ति के जीवन में महाप्रभु दास जी हमारे पिताजी हैं। जब एकदम हम बालक अवस्था में आए थे तो इन्हीं के घर में हमने आश्रय लिया था। सब लोगों ने, डॉक्टर जितने भी, गिरिराज प्रभु जिन्होंने कल प्रवचन दिया, माधवानंद प्रभु जिन्होंने पहले प्रवचन दिया, मैं, द्वारकाधीश प्रभु, हमारी पत्नियाँ, ये सब हम इनके घर में लड्डू खाते थे हमेशा। मारवाड़ी सब्जी, कद्दू की पूड़ी, हाँ, और मूंग दाल का हलवा। इसी के लिए हम हॉस्टल से बिना चुके हर शुक्रवार को पहुँचते थे उनके पास। कुछ भी हो जाए लेकिन शुक्रवार का कार्यक्रम हम लोग छोड़ते नहीं थे। इस तरह से हमारे भक्ति जीवन का जो शुरुआत था उसका पूरा पोषण होता ना, पोषण, नरिशमेंट, ये महाप्रभु जी के खार सेंटर से हुआ है। इसलिए हम सब लोग जन्म जन्मांतर तक महाप्रभु जी के ऋणी रहेंगे।
इनका और इनकी पत्नी वो खड़ी हैं, इनका मीटिंग पॉइंट हमारे घर पर था।
इन्होंने बहुत कोशिश की हमको बताने का, इनके भाई साहब ने, कि आप यहाँ मिलो, आप वहां मिलो, वहां पर कांदा लहसुन के बगैर प्रसाद मिलता है, लेकिन हमने सोचा यही अच्छी जगह है। हरे कृष्णा। तो भक्तों का सहारा ही इस जीवन में सबसे बड़ा सहारा है। हमने कल भी आपको कीर्तन में यही कहा था, सब सारे झूठे हैं। हमारे मन में ऐसे भी उस समय विचार आ रहे थे जो महाप्रभु जी को पता नहीं था। हम लोग दोनों सोच रहे थे कि अगर कभी घर से निकलने का चांस आएगा तो महाप्रभु जी घर में जाकर रहेंगे। ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन अभी भी महाप्रभु जी के घर में राधा वृंदावन नटवर के विग्रह जो है 1979 में स्थापन किए गए हैं, और 30 साल पूरे हो गए उसके, 30 साल नहीं, 31 साल पूरे हो गए सर, 31 ईयर्स कंप्लीट हो गए। महाप्रभु जी की उम्र केवल 74 साल की है, और उनका उत्साह अगर देखेंगे तो यहाँ के जवान लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। हाँ, विल डाई आउट ऑफ शेम लुकिंग एट द एंथुसियाज्म ऑफ हिज ग्रेस महाप्रभु जी। एक बार और सबको प्रेम से बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, भगवान के नाम को उनके अर्थ को समझते हुए पुकारो, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
सब लोग बोलना
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय राधे जय जय कृष्णा जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
बोलो बोलो
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम,
जय हो
जय हो जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम जय
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे श्री वृंदावन धाम की। बड़ी पवित्र जगह पर हम बैठे हैं। ये कुसुम सरोवर धाम है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की नित्य लीला चलती रहती है। तो आज हम श्री गोवर्धन के आश्रय में यहाँ बैठे हुए हैं। तो श्री गोवर्धन की उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण में हुई है। द्रोणाचल के पुत्र के रूप में सलमली द्वीप में श्री गोवर्धन का जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो उनका साइज जो था मैं बताऊंगा आपको। इनका जन्म इस प्रकार से हुआ था कि थोड़ा शांति रखे वहां पर बाहर। भगवान ने राधा रानी के साथ में जब लीला रचाने की विचार किया तो उनके हृदय के अंदर से बीज के रूप में श्री गोवर्धन जी प्रकट हो गए और बाह्य रूप में जब आए तो बढ़ते गए अति उल्लास और आनंद से भगवान के परम भक्त होने के नाते बढ़ते गए। उसका शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जब पूरी तरह से वो बढ़ गए तो उनकी लंबाई 50 करोड़ योजन थी, मतलब कितने 400 करोड़ मील आकाश में थे वो, और उनकी चौड़ाई 100,000 योजन थी, यानी कि 800,000 माइल्स थी, और उनकी लंबाई जो थी मतलब ऐसे जहाँ परिक्रमा करते हैं वो 100 करोड़ योजन थी, यानी कि 800 करोड़ मील। आज अगर आपको कहा जाए कि आपको 800 करोड़ मील चलना है परिक्रमा के लिए तो कैसे होगा? लेकिन जैसे ही इनका आकार ऐसे हुआ भगवान ने उनको अपनी शक्ति से फिर दोबारा सीमित कर दिया। वो जो सीमित किया उसका आकार भी सुन लो, उनकी हाइट जो थी आकाश में 16 मील, और उनकी जो लंबाई थी परिक्रमा करने की वो थी 64 माइल, और जो उनकी चौड़ाई थी वो है 40 माइल। ये उनका आकार था सत्ययुग में जब द्रोणाचल के पुत्र के रूप में वो पर्वत राज्यों में विराजमान थे। तो उस समय वहाँ पर एक पुलस्त्य मुनि आए काशी से, और काशी से अच्छा काशी जो है वो समतल जगह है, वहाँ पर कोई पर्वत वगैरह नहीं है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जप करने के लिए और भजन करने के लिए योग्य कई जगहें शास्त्र में बताई गई है। एक जगह है भगवान के मंदिर में, वो सबसे श्रेष्ठ जगह है, उसको वैकुंठ माना गया है। भगवान कृष्ण का और विष्णु का मंदिर जो है सत्वगुण में होता है, विशुद्ध सत्वगुण में। दूसरी जगह है बगीचा उपवन, तीसरी जगह है वन फॉरेस्ट, चौथी जगह है जलाशय का किनारा यानी कोई कुंड का किनारा जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, पर्वत का शिखर, गुफा, ये भी जप के लिए अनुकूल जगह मानी गई है। जहाँ पर भक्तों का संघ हो वो भी सर्वोच्च जगह है भगवान का जप करने के लिए। हाँ, वो अगर गटर के पास भी हो लेकिन भक्तों का संघ हो वो भी वैकुंठ है। हाँ, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, नाहम तिष्ठति वैकुंठे नच योगिनाम हृदयेन हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जब मेरे भक्त एकत्र होकर मुझे पुकारते हैं वही मैं निवास करता हूँ, जहाँ वो निवास करते हैं वही वैकुंठ है, वही गोलोक धाम है। इस तरह से पर्वत राजी वहाँ पर काशी में नहीं थी, तो जब पुलस्त्य मुनि घूमते आए पर्वतों में तो द्रोणाचल जो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। बाबू जी आप बैठे आराम से, थोड़ा इधर आ जाइए, कम्फर्टेबल प्लीज कम। अच्छा ऊपर तो उन्हें तुरंत इच्छा की अगर मेरे काशी में ऐसा पर्वत हो तो मेरा भजन अच्छा हो जाएगा। तो उनके पिता के पास गए द्रोणगिरि के पास। अब ये जो सब भक्त हैं वो अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं, कुछ भक्त पर्वत बन जाते हैं, कुछ देवियां नदी बन जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुंड बन जाते हैं, कुछ व्यक्ति तीर्थ बन जाते हैं, कुछ व्यक्ति धाम बन जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। सारे ही जो धाम है भगवान के, बलराम जी का विस्तार है, बलराम जी अपने अस्तित्व का रूप का विस्तार करते हैं, उसमें सब भगवान लीला करते हैं। द्रोणगिरि के पास पुलस्त्य मुनि ने पूछा कि ये आपका जो पुत्र है ये बहुत मुझे प्रिय लग रहा है, मेरे भजन के लिए अनुकूल है, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। तो द्रोणगिरि बेहोश हो गए दुख में, क्योंकि अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऋषि का आदेश कैसे हम तोड़ सकते हैं, शाप लगेगा, अपराध होगा, तो वहाँ कर देते हैं। और गोवर्धन भी तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उस समय गोवर्धन इस आकार के थे, 16 माइल आकाश में ऊंचे थे। तो एक खिलौने को बच्चा जैसे उठाता है, उस तरह से पुलस्त्य मुनि ने गिरिराज को उठाया और वो चलने लगे आराम से एकदम, ऐसे कोई श्रम हो रहा है, दम घुट रहा है, कोई ऐसे कुंथन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से चल रहे हैं। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हम आपके संग चलेंगे, आप हमें कहीं नीचे नहीं रखेंगे, थोड़ा बालक को माता के पास कर दो, ठीक, कहीं भी नीचे रखेंगे नहीं, और नीचे रखेंगे तो वहीं हम बस जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुलस्त्य मुनि बिल्कुल योगी हैं, उनका सब वेगों पर नियंत्रण है, मन के वेग पर, काम के वेग पर, उदर के वेग पर, जिह्वा वेग पर, वाचा वेग पर, सब उनका नियंत्रण है। वैसे ही और भी जो वेग होते हैं अपने जीवन में, हाँ, लघु शंका का वेग, मूत्र का वेग, मलम विसर्जन का वेग जो होता है, वो भी बहुत मुश्किल होता है, हेल्थ के लिए भी वो बहुत मुश्किल होता है। सब वेगों पर नियंत्रण है उनका और वो आराम से चल रहे हैं। जैसे ही गिरिराज जी चल रहे हैं उनके कंधे पर, हाथ पर, जो ब्रज में आते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और लगता है कि अभी यहाँ कृष्ण की, मेरे ठाकुर जी की लीला भूमि है, मुझे यही सेवा करनी चाहिए। तो उस समय पुलस्त्य मुनि को लघु शंका लगती है और वो इतने वश हो जाते हैं उसके अंदर, योगी, नियंत्रित करने वाले योगी, एकदम इतने वश होकर तुरंत उसको नीचे रखते हैं और भाग के लघु शंका कर देते हैं। लौट के आते हैं निवृत्त होकर, तो गिरिराज जी उनसे उठते नहीं हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उठते नहीं हैं, डांटते हैं, तो कहते हैं हमने आपको कहा था कि आप हमको नीचे रखेंगे तो हम ऊपर नहीं उठेंगे वापस एक बार, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उनको शाप देते हैं कि आप हर रोज एक सरसों के दानों के आकार से जमीन में धंस जाओगे। तो ऐसे वर्णन आता है कि उस समय गिरिराज के मन में दो बातें थी, दुविधा थी, कि ऋषि को प्रसन्न किया जाए कि भगवान की सेवा के लिए शाप ग्रहण किया जाए, मन में दुविधा चल रही है। तो भक्त का लक्षण ऐसा होता है कि भगवान की खुशी के लिए वो कितना भी शाप स्वीकार करने को तैयार होते हैं, भगवान की खुशी सर्वोच्च खुशी है। अगर दो व्यक्तियों को प्रसन्न करने का प्रश्न आता है और उसमें से एक भक्त है या एक भगवान है, तो हमें भगवान को प्रसन्न करने का या भक्त को प्रसन्न करने का जो पर्याय है उसको चुनना चाहिए। चाहे हमको कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, कोई नुकसान हो हमारा, कोई लाभ हानि हो हमारी, फिर भी हमको भगवान की सेवा का जो पर्याय है उसको चुनना चाहिए। तो ये जानते थे कि ऋषि हमको श्राप देंगे, फिर भी वो ऋषि का श्राप स्वीकार करते हैं और वहाँ रहते हैं, फिर ऋषि आगे चले जाते हैं, पर्वत वहीं रह जाता है। ये सत्ययुग की बात है और वहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं कि द्वापर के अंत में भगवान आएंगे और मेरे पास लीला करेंगे, तो वेट कर रहे हैं। सत्ययुग जाता है, त्रेतायुग भी जाता है, चतुरायुग आता है, फिर भगवान रामचंद्र आते हैं और लीला करते हैं, रावण सीता को हरण कर लेता है, सेतु बंध बनाने का प्लान बनता है। तो सब बंदर जो है वो जगह जगह जाकर बड़े बड़े पर्वत उठाकर डालते हैं समुद्र में, राम जी का नाम लिखते हैं और पर्वत तैरता है, पर्वत शिखर तैरते हैं, चट्टानें तैरती हैं और सेतु बंदर का काम आगे आगे बढ़ता है। आखिर में 7 कोस की जगह बच जाती है और हनुमान जी सोचते हैं कि ये बहुत इमरजेंसी है, इसमें कोई धीरे धीरे करने वाला काम नहीं है, ऐसा एक पर्वत लिया जाए ढूंढ के, तो एक ही साथ में उसको रखा जाए तो एक झटके में काम पूरा हो जाए। तो वो आकाश में घूम रहे थे सब जगह पर। पहले तो बहुत उन्होंने हिमालय की सफर की, बहुत बार गए आए, उठाया गए आए, लास्ट में सब जगह ढूंढ रहे हैं, तो उनको ब्रज में ये बहुत सुंदर पर्वत दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर, तो नीचे उतरे और उनके पास टाइम नहीं था, तुरंत उन्हें उठाने का प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाए वो। अरे बहुत शक्तिशाली, मतलब विशेष पर्वत है, दोनों हाथ लगाए, बहुत जोर लगाया सब, श्री राम की जय हो करके उठाया लेकिन नहीं उठा सके। तो सोचा कि हम उसका विस्तार देखेंगे भाई कितना बड़ा है, तो जैसे गोवर्धन ऐसे है इस तरह से, तो इस दिशा में जाने लगे, देखेंगे कहाँ तक है, नहीं एंड कहाँ तक है। जैसे वो यहाँ से उड़ने लगे तो गिरिराज जी वहाँ से बढ़ने लगे, आगे आगे गए तो गिरिराज जी उसका अंत नहीं मिल रहा है, गिरिराज जी बढ़ते 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 जा रहे हैं, फिर इस तरफ आते हैं यहाँ से बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो गिरिराज जी वहाँ से बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तब वो समझते कोई दिव्य विभूति है, दिव्य व्यक्ति कोई है, तो आके दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते महाराज जी आप महात्मा हो, आप अपना परिचय दीजिए, मैं कुछ विशेष हेतु लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो उस समय गिरिराज जी अपना परिचय देते हैं कि मैं द्रोणगिरि का पुत्र गिरिराज हूँ, गोवर्धन। तो कहते हैं कि मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए आपको लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। पूरी कथा बताते हैं, कैसे संक्षेप में बताते थे कि रावण ने सीता का हरण किया है, सेतु बंधन हो रहा है, इसलिए हम आपको ठाकुर जी की सेवा में ले जा रहे हैं। तुरंत ही अपने उठ जाते हैं उनसे, जो पहले नहीं उठ रहे थे स्वेच्छा से उठ जाते हैं। पहली भी कथा में आप देख सकते हैं कि भक्त की जो भक्ति होती है वो योगी के योगी शक्ति से भी ज्यादा बढ़कर होती है। हाँ, कौन जीत गया? योगी नहीं जीता, योगी ने बहुत प्रयास किया, शाप भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब भक्त का शक्ति जो होता है, हमको सबको विश्वास होना चाहिए कि जो सिद्धियां हैं, ये जो बड़ी बड़ी प्राप्तियां हैं, ये भक्त के भक्ति की प्राप्ति के सामने कुछ भी नहीं है। परम श्रेष्ठ जो गतिविधि है वो भक्ति की भी। और भगवान योग से सिद्धि से प्रसन्न नहीं होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वो तुरंत उठ जाते हैं और तुरंत हनुमान जी उनको लेकर आकाश में उड़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए। उस समय देववाणी होती है आकाश में कि सेतुबंध का कार्य पूरा हो चुका है, अभी किसी अन्य पर्वत की या शिलाओं की जरूरत नहीं है। तो दोबारा उनको लेकर नीचे उतरते हैं। तब गिरिराज गोवर्धन बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, इतने भाव में वो रोते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं उनके, बहुत रुदन करते हैं, बहुत दुख होता है उनको। तो हनुमान जी उनका ये विरह और प्रेम देख के दंग रह जाते हैं। तो चले जाते हैं, प्रभु रामचंद्र को सब वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे पर्वत को हम मिले, ऐसे ऐसे हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, हम ले नहीं पाए उनको, और नहीं ले पाए इस भाव इसी क्षण से वो इतने दुखी हो गए। तो प्रभु रामचंद्र बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा जाओ उनको संदेश लेकर आओ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार मैं आपकी सेवा नहीं ले सका, लेकिन जब मैं कृष्ण लीला में कृष्ण बनकर आऊँगा अगले युग में, अगले युग के अंत में, तब मेरी जो विशेष अंतरंग लीला है वो आपके तलैटी में करूँगा। तलैटी मतलब बिल्कुल पास में उसके एकदम, हाँ, तल में उसके, एट द बेस। तो आपके तलैटी में मैं मेरी अंतरंग लीला जो है, विशेष अंतरंग लीला, वो संपन्न करूँगा। तब इनका कुछ विरह थोड़ा शांत हो जाता है। तो ऐसे ही गिरिराज जी हैं। हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये भगवान ने गिरिराज को उठाया, सब ऐसे ही कपोल कल्पित कहानियाँ हैं, माइथोलॉजी है, दंत कथा है, तो सच नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन भगवान ही नहीं, भगवान का एक कश्चित अंश जो है, जीव पुलत्स्य मुनि, उसने तो हजारों गुना बड़ा था पर्वत, तभी भी उसको आसानी से उठाया था। उसके बाद में हनुमान जी ने भी उठाया है, तो भगवान को क्या डिफिकल्टी है उसको उठाने की? अरे भगवान वो पर्वत जिस लोक पर है, पृथ्वी लोक पर, ऐसे अनंत ग्रहों को और मालिकाओं को वो आकाश में तैराते हैं बिना साया, वो उठाते भी नहीं है, उनकी इच्छा से तैरते रहते हैं। कभी सुना है आपने आकाश में ट्रैफिक जाम हो गया, सूरज का और पृथ्वी का एक्सीडेंट हो गया, सब सूर्य और चंद्र का काम बंद हो गया, अभी ऐसा कभी सुना है आपने? कभी नहीं होता ऐसे। इतने अनंत अनंत ग्रह गोल जो है आकाश में तैर रहे हैं, कभी भी उनका कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। समय पर सूर्य आता है, चंद्र आता है, अपने अपने कक्षा में घूमते रहते हैं, उसमें हजारों अनंत पर्वत रहते हैं, सबको भगवान अपनी इच्छा से गुरुत्वाकर्षण से तैरा रहे हैं। तो इस तरह से गिरिराज गोवर्धन जो है भगवान के बड़े भक्त हैं। सब गोपियाँ जो भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, वो उनको हरिदास वर्य के नाम के पुकारती है। हरिदास वर्य मतलब जो हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के गोपियाँ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं जब भगवान के अपने भक्त बनकर आते हैं, तो सन्यासी का व्रत एकदम कठोरता से पालन करते हैं, फिर भी गोपियों के चरणों के रज चाहते हैं और कहते हैं गोपियों गोपी भरत और पदकमलयोर दास दास अनुदास, मैं इन गोपियों के चरणों की दासी दास बनना चाहता हूँ। उनके नाथ जो हैं गोपी भरत और पदकमलयोर दास दास अनुदास, तो इतना गोपियों का गौरव करते हैं। और वो गोपियां कहती हैं भगवान के इस भक्त को कि आप भगवान के भक्तों में हरिदास वर्य हो, श्रेष्ठ हो। ऐसे गिरिराज जी जो हैं, हम सबको पता होना चाहिए कि ये भगवान की परम भक्ति प्रदान करने वाले हैं। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं गिरिराज जी का आश्रय लेने के लिए। हम लोग परिक्रमा करने वाले थे, लेकिन एक चिट्ठी आया था, किधर गया वो चिट्ठी? देखो उसमें चिट्ठी, ठीक से पढ़ना था मुझे उसको, क्या लिखा है उसमें? हाँ, लेकिन ये जो वातावरण है आज का, जो हमने पहले ही परिक्रमा दिया है, एक पूरा हिस्सा है वहाँ पर पूरे पत्थर पत्थर ही पड़े हुए हैं, रास्ता बन रहा है। तो फिर सब मैंने फ़ोन कर गया, पूछा तो ब्रजवासियों को, वहाँ पर सब जगह कीचड़ हो गया है और चलना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि आप बेहतर ये है कि आप चलने की परिक्रमा कैंसिल कर दो और दर्शन परिक्रमा करो। इसलिए हमने फिर निर्णय लिया, क्योंकि हमारे में बहुत बुज़ुर्ग भी लोग हैं जो बड़े उम्र वाले भी हैं, पैरों में दर्द वाले लोग भी हैं, उसमें से 100 लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो फिर बाकी सब लोग का बहुत पीड़ा हो सकती है। इसलिए हम सबके हित को एक सामायिक हित के रूप में सोचा कि हम लोग बैठ के कथा करेंगे और आगे दर्शन करते रहेंगे बस में बैठ कर। माफ़ी चाहते हैं आपके लिए, कभी भगवान की इच्छा हो तो आपको दोबारा मौका मिल सकता है परिक्रमा करने का। तो इस तरह से गोवर्धन का वर्णन गोपियाँ करती हैं कि वो हरिदास वर्य हैं। क्यों करती हैं, वो वर्णन भी करते हैं क्यों करती हैं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन हर प्रकार से ब्रजवासियों की सेवा करता है। सबसे पहले तो गोवर्धन उनका नाम है, गो संवर्धन, यानी कि गो के कई अर्थ बताए गए हैं शास्त्र में, 11 अर्थ कल बताए गए हैं मुझे कुछ 3-4 याद हैं। एक गो मतलब इंद्रिया हमारी, दूसरा गो मतलब पृथ्वी, तीसरा गो मतलब गाय, और बहुत सारे ऐसे मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन गोवर्धन यानी सभी वस्तुओं को वो वर्धन करने वाला है, पुष्टि करने वाला है, उसका पोषण करने वाला है। तो सबसे पहले तो गायों के लिए जो सुगंधित मुलायम पौष्टिक घास है वो गोवर्धन देता है, वहाँ गाय चरती है, फिर गाय दूध देती है, दूध का दही बनता है, दही का मक्खन बनता है, इस प्रकार से ग्वाल वालों का जो जीवन चरितार्थ वो चलता है। फिर गोवर्धन में दो प्रकार की शिलाएं हैं, एक लाइट रंग की है और एक डार्क रंग की है, या तो कृष्ण बलराम के रूप समझ सकते हैं या राधा कृष्ण का रूप समझ सकते हैं। आप देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे, एक नीले रंग की शिला है घनश्याम रंग की और एक कोरे रंग की शिला, पास पास में होती है, बहुत सारी शिलाएं देखते रहेंगे आप पर्वत में। और ये शिला सख्त होती है बहुत, लेकिन जब जैसे ही ग्वाल बाल गाय कृष्ण बलराम उस पर पैर रखते हैं वो एकदम मुलायम बन जाती है। उसके दो कारण हैं, एक तो भगवान के चरण को आनंद देने के लिए, भगवान के चरण कमल तो को कमल से भी अधिक मुलायम है, तो सख्त पाँव में रखेंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो तुरंत ही उसको मुलायम बना देते हैं। दूसरा कारण यह है कि भगवान का चरण स्पर्श होते ही वो पिघल जाते हैं और मुलायम बन जाते हैं। मैंने कल बताया ना, कहानी बताई थी ना बरसाने में भी, कि जैसे भगवान के चरण कमल पड़ते हैं तो भगवान का दर्शन और चरण कमल अस्तित्व से ही पर्वत भी बहुत मुलायम बन जाता है, भगवान के चरणों को सुख देता है। फिर उसके अंदर बहुत गुफाएं हैं जहाँ भगवान बैठकर अपनी सखियों से मिल सकते हैं, सखाओं से मिल सकते हैं, सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। बहुत ऐसे उसमें वृक्ष है, हर प्रकार के वृक्ष है, उसमें फल है, फूल है, भगवान के आनंद के लिए खुशबूदार फल फूल आते हैं उसमें, और वायु ऐसे वहाँ पर घूमती है कि वो खुशबूदार फूलों की खुशबू लेकर वहाँ पर जो जलाशय हैं, बहुत सारे जलाशय हैं, झरने हैं, उसके अंदर सुंदर सुंदर तालाब बने हुए हैं, उसमें से जो बाष्प ऊपर आता है उसको हवा लेके चलती है, साथ साथ में फूलों की खुशबू लेके चलती है, और वो ठंडक भरी बाष्प भरी सुगंधित हवा जो है वो ग्वाल बालों को कृष्ण बलराम के त्वचा को बहुत आनंद देती है। ये वृंदावन का वातावरण है। फिर कमल खिलते हैं वहाँ पर सुंदर सुंदर, फिर वहाँ पर जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं हर प्रकार की, रत्न और हीरे माणिक उपलब्ध है, हर प्रकार से भगवान की खुशी के लिए आनंद के लिए हर प्रकार की प्रोविजन जो है वो गिरिराज गोवर्धन करते हैं, और जो जो जरूरत है भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, वो सब गिरिराज गोवर्धन वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन का बहुत महात्म्य है। और जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो उसका अर्थ है पाद सेवनम, हम भगवान गिरिराज जो है उनका दो स्वरूप है, वो स्वयं भगवान भी हैं और भगवान के दास भी हैं। इस वृंदावन धाम में तीनों प्रमुख देवताएं पर्वत बने हैं, ब्रह्मा जी बरसाने में बने हैं, शिव जी नंदगांव में बने हैं, और स्वयं विष्णु जो हैं वो गोवर्धन बने हुए हैं। इसलिए वो हमारे लिए भगवान जैसे पूजनीय भी है और वो स्वयं भगवान के सेवक भी है। जैसे बलराम जी कैसे हैं, वो भी भगवान हैं स्वयं, लेकिन बलराम जी सेवक भगवान हैं, भगवान के विस्तार हैं, प्रथम विस्तार, और भगवान की सेवा करते हैं। इतना प्रिय है गोवर्धन भगवान को, राधा रानी को, कि जब यहाँ पर आने का समय हुआ तो कृष्ण भगवान ने जब पूछा कि चलो राधा रानी हमको अवतार लेने का समय हो गया है, तो वो कहती हैं कि जहाँ वृंदावन नहीं है, श्री गोवर्धन नहीं है और जमुना जी नहीं है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। तो वो कहते हैं कि आपका अंतरंग की इच्छा जानते हुए पहले से ही मैंने गोलोक वृंदावन से वृंदावन जमुना जी और गोवर्धन को नीचे भेज दिया है। तो राधा रानी तुरंत तैयार हो जाती है। इसका मतलब क्या है, भगवान जो है अपना घर लेकर ही आते हैं अवतार लेने के लिए, अपने घर के साथ में अवतार लेते हैं और घर में ही लीला करते हैं। इसका मतलब कभी भी अपने घर से वो कदम बाहर रखते नहीं है, ये उसका अर्थ है। इस तरह से श्री गिरिराज गोवर्धन सबको भक्ति प्रदान करने वाला है। हम सबको जब गिरा का दर्शन होगा थोड़ी देर के बाद में, तो सब लोगों को हृदय से भक्ति की याचना करनी चाहिए, क्योंकि वो भक्ति को देने वाले हैं, भक्ति दे सकते हैं। जो भी प्रामाणिक याचक विनती करके उनको भक्ति का मांग करता है, वो उनको भक्ति प्रदान करते हैं। इसमें कई प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं। एक है पार्श्व तीर्थ, उसमें कृष्ण गोपाल, कृष्ण और भगवान को साथ गोपाल लोग क्रीड़ा करते हैं। फिर एक कटी प्रदेश है उनका, वहाँ पर राधा माधव जो है अपनी माधुरी लीला करते हैं। फिर उनका पृष्ठ देश है जहाँ पर कदम्ब और पलाश के पत्ते पर गोपियाँ अपने घर से बड़े बड़े प्रेम से माखन मिश्री सब लेके आते हैं और ग्वाल बालों को खिलाते हैं। कदम के बताया ना कल आपको मैंने, दोना दोना होता है, और पुराने ज़माने में कदम के वृक्ष पर दोना अपने आप आते थे। हा? तो उसमें यहाँ पर गिरिराज में गोपियाँ बड़े प्रेम से गोपालों को और कृष्ण भगवान को बलराम जी को माखन खिलाते हैं। फिर एक तीर्थ है लौकिक तीर्थ, जहाँ पर सख्य जिला का साम्राज्य है, वहाँ पर लुका छिपी, जिना चिना झपटी, प्रसाद पाना, गेंद खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, बंदर बनना, कूदना, हंसी मजाक, हास परिहास, इस प्रकार की जिलाएँ सखा लोग करते हैं। और सबसे इनका सर्वोच्चम तीर्थ जो है गोवर्धन के अंदर, वो है श्रृंगार तीर्थ। श्रृंगार तीर्थ के अंदर भगवान गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, सर्वोच्च आनंद जो जीव को देना चाहते हैं वो रासलीला के माध्यम से वो श्रृंगार तीर्थ में प्रकट करते हैं। कोई विशेष जगह नहीं है, जहाँ पर भी लीला करते हैं वो जगह श्रृंगार तीर्थ कहला जाती है। जहाँ पर सख्य लीला होती है उसको लौकिक तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की लीलाएँ जो अंतरंग लीलाएँ हैं, ये सब गोवर्धन के आसपास होती है। और एक गोवर्धन की विशेषता यह, गोवर्धन ये मोर के आकार में, वो भी कैसे, भाव विभोर मोर के आकार में। अपना मोर कैसे होता है, पैर नीचे होते हैं, आपके सामने चेहरा होता है, फिर चोच होती है उसकी, ऊपर भी पंख पिसारा होता है, लेकिन ये मोर उल्टा है, मतलब ऐसे पीठ के बल सोया हुआ है, उसका आंखें ऐसी ऊपर हैं। तो ये जो कुसुम सरोवर है ये भगवान का मुख कमल है, दिस इज द फेस ऑफ गोवर्धन। और राधा कुंड श्याम कुंड जो है भगवान के दो कमल नयन नेत्र बताए गए हैं। और दान घाटी जो है वो वर्धन भगवान की गोवर्धन का गर्दन है, कंठ प्रदेश है। और पूंछरी जो है उनका एंड है, पूंछ है मोर का, इस तरह से गोवर्धन का निर्माण है। और दान घाटी जहाँ पर है वहाँ पर गोवर्धन की जो गर्दन है वो ऐसे जाती है, तो ये जो हिस्सा है वो जमीन के नीचे है, इसलिए हम लोग जब बस से ऐसे आए ना दान घाटी के ऊपर से आए, वो जो भगवान का कंठ प्रदेश है। और ऐसे अनेक घाटियाँ हैं वृंदावन गोवर्धन में, जहाँ से इस पार से उस पार जाने का रास्ता है। जैसे अभी यहाँ पर हम बैठे हैं, इसके लेफ्ट साइड में वो घाटी है जहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ पार कर सकते हैं, फिर दान घाटी में कर सकते हैं, आगे भी जगह है। और ये दान घाटियाँ विशेष लीला स्थली है जहाँ पर बरसाने से गोपियाँ आती है और भगवान यहाँ से आके उसको रोक लेते हैं। ये जो सामने बताया सांकरे कोर में लीला बताई आपको कल, सांकरे कोर की लीलाई यहाँ पर भी होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से श्री गोवर्धन जो है भगवान के बड़े विशेष भक्त हैं। और हम जिस जगह बैठे हैं वो कुसुम सरोवर है, ये जो प्रदेश है इसको कुसुम वन कहा गया है, कुसुम वन, सुमन वन, पुष्प वन, फूल वन। और यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो भगवान के श्रृंगार करने के लिए फूल बिनने को आती थी। यहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगी सुगंधी, अलग अलग प्रकार के सुगंध वाले, बहुत सुंदर वातावरण यहाँ हुआ करता था। और वो गोपियाँ यहाँ पर बड़ी चुप चुप के आती थी और फूल बिनती थी। तो ये फूल बिनकर वो जमुना जी के ओर जाती थी, जमुना जी में फूल धोकर फिर माला बना के फिर संध्या को जो निकुंज लीला होती है उसमें वो भगवान को अर्पण करते थे। और उनकी सेवा जो है वो ऐसे ऐसे नहीं कि फूल बना रहे हैं और सोच रहे हैं, मन में कुछ विचार आ रहा है, किसके साथ झगड़ा हुआ उसका विचार आ रहा है, कोई विकार है मन में, ऐसा नहीं है। कोई भी सेवा जब गोपियाँ करती है एकाग्र होकर, मग्न होकर, फुल्ली एब्सॉर्ब्ड ऐसे करती है। जैसे भी यह फूल बिनने आती है तो पूरा अपना देह भान भूल जाती है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए फूल बिनने में कैसा फूल उनके लिए अच्छा रहेगा वो सोच सोच के उसको बिनती रहती है। तो ऐसे एक बार सब सखियाँ, राधा रानी सब फूल बिन रहे थे यहाँ पर, इतने मग्न हो गए थे फूल बिनने में, तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि कुछ लीला करनी चाहिए। तो सब फूल में बिनने में भी मग्न हैं, उनके पल्लू सब चुनरियाँ सब कांटों में अटके हुए हैं, उनको पता नहीं है, वो फूल इकट्ठा कर रही है बहुत ध्यान से एकदम। उतने में माली आता है वहाँ से, बड़ा डंडा लेकर आता है वो, ठाक ठाक जमीन पे ऐसे पटक पटक के सबको सतर्क करते हुए आता है। तो सब गोपियाँ सावध हो जाती हैं, सतर्क हो जाती हैं और भागने लगती हैं। हाँ, और पुकारते हैं, श्री जी, राधा रानी, भागो, मोली माली आ रहा है, माली आ रहा है। तो वो भी ऐसे एकदम परेशान हो जाती है, यहाँ वहाँ देखती है क्या करें, देखती है माली दूर से आ रहा है, उसका जो आवाज़ है ठाक, वो पास 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 आ रही है, वो देख रहे हैं कि आ रहा है हमारे सामने, सब गोपियां भाग रही हैं, कुछ फील जमीन पे गिर रहे हैं, कुछ चुंदरी में है, कुछ पल्ले में रखे हुए हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, लेकिन ये राधा रानी जो है उनका इतना पल्लू कांटों में अटका हुआ है कि वो यहाँ से निकाल रहे तो यहाँ अटक रहा है, यहाँ से निकाल रहे तो यहाँ अटक रहा है, कुछ फूल पकड़े हुए हैं वो नीचे गिर रहे हैं, उसको सवार रहे हैं तो और अटक रहा है, ऐसे सब परेशानी के अंदर उनके कपाल से पसीने के बिंदु आते हैं, स्वेद के बिंदु आते हैं, मतलब एकदम एंग्जाइटी के अंदर वो धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, मैं माली से पकड़ी जाऊंगी, और सब सखियां भाग रही हैं, बोला श्री जी भागो भागो जल्दी निकलो भागो, भाग नहीं पाती, सब सखियां भाग जाती हैं, और वो माली पास में आता है और डंडा ऐसे ठा करके जमीन पर लगाता है और ऐसे खड़े हो जाता है एकदम गुस्से से लाल आके लेकर, राधा रानी एकदम डर के डर जाती है उसको, और तुरंत माली हंस पड़ता है, अपना रूप बदल के दिखाता है मैं कृष्ण हूं, तो एकदम राधा रानी मैंने सोचा क्या होगा आज क्या मेरा अंजाम होगा, लेकिन ये तुम थे, वाह इतने आनंद की बात है, कैसे आपने सोचा ऐसे आज लीला करने का, आज मेरी आपसे अकेले में मिलने की इच्छा थी इसलिए मैंने सब गोपियों को भगा दिया तभी क्या किया जाए, कभी कभी ये फूल बिने हुए हैं कुछ जमीन पे गिरे हैं तो अभी वो साफ किए बिना हम लोग सेवा नहीं कर सकते, आपके लिए बिने हुए हैं तो कहाँ जाते हैं आप साफ करने के लिए, तो हम जमुना जाती हैं उसको धोती हैं जमुना जल में, अभी आपके संग में इतनी दूर जमुना में कैसे जाएंगे, हाँ सब ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो बोले कोई बात नहीं हम जमुना जी को यहाँ बुला लेंगे, ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते, तो बाबा ये उन्होंने बंसी से बनाया कि पैर से बनाया, बंसी से जमीन में छेद किया उन्होंने और जमुना जी को यहाँ पर आह्वान किया और जमुना जी आ गए, देखो इतना विशाल कुंड बना है, हमने किसी किताब में पढ़ा था कि इसकी गहराई 80,000 योजन है, कई लोगों तक पहुंचता नीचे ऐसे हमने पढ़ा था, तो ऐसा विशाल जलाशय जो है बहुत विरला है, हाँ मानसिक गंगा और एक है आगे, बहुत सुंदर जलाशय, यहाँ पर आते ही आपको एकदम प्रसन्न लगा होगा, दिव्य अनुभव हो गया होगा, हाँ ये भगवान की परम प्रिय लीला स्थली है, तो फिर जब जलाशय उत्पन्न होता है सुंदर मनमोहक, तो फिर वो उसको फूल को धोते हैं उसके अंदर, और फिर हमेशा राधा और गोपियाँ मिलकर उनकी मालाएं बनाते हैं भगवान के आनंद के लिए, इस बार उल्टा होता है, भगवान अपने हाथ से मालाएं बनाते हैं और राधा रानी के बालों को संवारते हैं, उसका कहते हैं वेणी गुथन, हाँ ठीक है ना वेणी गुथन, तो वेणी गुथन लीला मतलब भगवान उनके बालों को संवारते हैं, कंघी करते हैं, वेणी बनाते हैं, उसमें फूल सजाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है इसके, हम जहाँ से अंदर आए गेट में उसके थोड़ा सा बाजू में एक मंदिर है, उसका नाम है राधा वन बिहारी मंदिर, सबसे पहली बार जब हम आए थे यहाँ पर तो गिरिराज परिक्रमा में थोड़ा सा हम कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग उस मंदिर में रुके थे, तो उस मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने अपने ब्रज भाषा में हमको पूरी कहानी सुनाई थी, ये आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी सुंदर कहानी सुनी थी 86 के पहले अपने वृंदावन की यात्रा में आए थे ना, तभी ये कहानी हमने सुनी थी, इतनी सुंदर कहानी है, तो बाबा जो है बड़े प्रिय भगवान के भक्त थे, वो जो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो हमारे इस्कॉन का एक सेंटर है स्कॉटलैंड में, जो इंग्लैंड होता है ना इंग्लैंड के आगे एक और एक देश है स्कॉटलैंड, वहाँ की पुलिस बहुत फेमस है स्कॉटिश, हाँ स्कॉटलैंड यार, तो वहाँ के भक्तों को उस बाबा ने बड़े प्रेम से उनकी श्रद्धा और उनका समर्पण देखते हुए उस मंदिर को उनको दान दे दिया, और अभी वही भक्त लोग जो मंदिर को संवारते, इतनी सुंदर मूर्ति है उसके अंदर, इतनी छोटी सी मूर्ति है कृष्ण भगवान की, गिरिराज शिला में बनी हुई है, और ऐसे भगवान ऐसे बैठे उनके हाथ में ऐसे कंघी है और एक हाथ में ऐसे राधा रानी को बाल को पकड़ा है, और राधा रानी नीचे बैठी है ऐसे लोअर लेवल पे, हाँ और वो अपना श्रृंगार करके ले रही है, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, हाथ में बड़ी बढ़िया से कंघी ऐसी मोटी सी, और वो उनके हाथ में आईना है, और सब जब हमारे घर में कोई छोटी बालिका होती है तो माँ उसके बाल संवारती है ना, तो कभी कभी आईना लेके किसको देखती है आईने में, खुद को देखती है ना, तो यहाँ पर राधा रानी खुद को नहीं देख रही है, राधा रानी ऐसे पकड़ा है उसको आईने को और जो बाल संवार रहे हैं उनको देख रही है, क्योंकि वो कभी भगवान के ऐसे कभी पीठ दिखा के बैठती नहीं ना, कभी वो कभी भी उनके भगवान को दर्शन छोड़ नहीं सकती, वो भगवान के मुख कमल को निहारना बंद नहीं कर सकती है, ये तो पीठ बना के बैठी है, तो उनको रहा नहीं जा रहा है, श्रृंगार तो हो रहा है, लीला तो हो रही है, लेकिन उनको भगवान के चेहरे के दर्शन के बिना नहीं रहा जा रहा है, इसलिए वो आईना पकड़ के उनका दर्शन कर रहे हैं, भगवान बड़े प्रेम से उनका वेणी गूथन कर रहे हैं, ऐसी लीला यहाँ पर है, तो आप जाते वक्त यहाँ से सब लोग दर्शन कीजिए प्रेम से कि कैसे भगवान यहाँ पर लीला करते हैं। ये लीला जो कुसुम सरोवर है यहाँ पर, इसके बीच में एक अशोक वन है, अशोक वन मतलब अशोक के वृक्ष होते हैं, बड़े अच्छे वृक्ष होते हैं, वो प्राचीन वृक्ष हैं, सब जगह दिखाई नहीं पड़ते हैं आपको, वृंदावन में, गोवर्धन में, सब जगह बरसाने में दिखाई पड़ेंगे। अर्जुन के वृक्ष होते हैं, अशोक के वृक्ष होते हैं, बहुत पुराने वृक्ष होते हैं, बहुत दिव्य वृक्ष हैं, भगवान की लीला स्थली यहाँ पर सब। तो अशोक वाटिका में एक छोटी सी कहानी है जैसे इस संबंधित, इससे जब राधा रानी का जन्म हुआ तो रावल में हुआ, तो नारद मुनि जी उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का गणित बना के चार्ट बनाया और देखा कि अभी किस जगह उनका जन्म हो गया है। तो नारद मुनि वो गणित के अनुसार ढूंढ ढूंढ के आते हैं रावल में और पूछते हैं कि हाँ कोई बालिका का जन्म हुआ है। तो माता पिता बहुत दुखी थे उस समय, राधा रानी का जन्म होने के बाद भी दुखी थे। क्यों? क्योंकि राधा रानी का जन्म होने के बाद वो ना आँख खोल रही है, ना उसे कुछ सुनाई पड़ रहा है, ना कुछ बोल रही है, मतलब गूंगी भी है, बहरी भी है और क्या कहते हैं उसको, अंधी भी है। तो इतनी सुंदर बालिका का प्राप्ति हुआ है लेकिन वो ऐसी है, तो फिर उनको जन्म बधाई मनाने के लिए भी उनको संकोच हो रहा है, कैसे बनाए बधाई उसकी। तो नारद मुनि वहाँ पे तो उनको बोलते नहीं यहाँ पर कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ है। नारद मुनि बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, मेरा गणित क्या हुआ, मेरा गणित जो है वो गलत नहीं हो सकता है, सॉरी। तो वो दोबारा परेशानों को जाने लगते हैं। उतने में राधा रानी के माता और पिता बात करते हैं, अरे हो सकता है इनकी कृपा से मेरी बेटी की आंखें खुल सकती हैं, वो हो सकता है उनकी कृपा से बोल सकती है, सुन सकती है। जाओ जाओ उनको बुलाओ वापस, फकीरों को बाबा दूर भेजती हैं, अरे बाबा आ जाओ जाओ जाओ, है हमारे घर में बालिका है, ठीक है, ऐसा ऐसा समस्या है। तो नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, धन्यवाद प्रणाम कर देते तुरंत बालिका के सामने, प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। और नारद मुनि कहते हैं कि इनके आँख खुलने का उपाय मेरे पास में है, आप चिंता मत करो, आप बड़ा आयोजन करो उत्सव का, सब लोगों को बुलाओ, उस उत्सव में नंद बाबा कृष्ण बलराम को बुलाने को भूलना नहीं, यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण बलराम सबको बुलाना, बड़ा उत्सव का आयोजन करना। अब देखो अंधी बालिका को लेकर उत्सव की योजना करते, बोलते हैं ये सब लिस्ट है, पूरा व्यवस्था बना देते हैं, आप सब लोग जाओ व्यवस्था करने लगो, क्योंकि उसको राधा रानी का अकेले में दर्शन करना था। तो राधा रानी का अकेले दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और वो याचना करते हैं कि आप मुझे अपने 16 साल की उम्र के दर्शन करना, किशोर अवस्था का। तो राधा रानी उनको किशोर अवस्था में, किशोरी के रूप में दर्शन देते हैं। फिर नारद मुनि बेहोश हो जाते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि आप मुझे अभी अष्ट सखियों के साथ दर्शन देना। तो कहते हैं उसके लिए आपको कुसुम सरोवर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ऐसे बेहोश होते होते फिर उठते हैं, फिर बेहोश होते हैं, ऐसे पता नहीं कैसे पहुँचते हैं, लोटपोट होते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, ऐसे भाव विभोर अवस्था में यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पर माधवी गोपी उनको मिलती है, भगवान की सखी है वो। तो माधवी गोपी को भगवान आदेश देते, जाओ इस नारद मुनि को दक्षिण कोने में तो कुसुम सरोवर के स्नान कराओ और तब ये गोपी का वेश प्राप्त करेंगे। गोपी वेश प्राप्त करके उन्हें रासमंडल में ले आना। तो माधवी गोपी उनका हाथ पकड़ के उनको स्नान कराती है, तो नारद मुनि नारद या गोपी बन जाते हैं। फिर अपने हाथों से माधवी गोपी उनको 16 श्रृंगार करती है, उनको पट घूंघट उड़ाती है, उनको अलंकार पहनाती है, उनके पाए में पाँव में आल्टा लगाती है, हाँ सब कुछ श्रृंगार करती हैं और हाथ पकड़ के उनको रासमंडल के बीच में आते हैं। ये जो जगह है बहुत बहुत ही दिव्य जगह है, हमारे नजरों में दर्शन नहीं हो रहा है लेकिन इसमें रासमंडल है, इसमें रत्न सिंहासन है, इसमें सखियों की जगह है, सब लोग बीच में राधा कृष्ण रत्न सिंहासन में विराजमान है, सब सखियाँ उनकी सेवा करती हैं, कुछ वाद्य बजा रही है, कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ तांबूल दे रहे हैं, कुछ भोजन बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सेवा यहाँ पर होती है। तो उस सबके बीच में माधवी गोपी उनको हाथ पकड़ के लेके आती है, उनके हाथ में चामर देती है और नारद मुनि के बड़े प्रेम से उनकी चामर की सेवा करते हैं, चामर डुलाते हुए यहाँ करने में वापस देखते हैं उनको, चामर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, तब यहाँ आते हैं फिर निहारते हैं, यहाँ आते हैं फिर निहारते हैं, फिर यहाँ आते हैं फिर निहारते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी को निहारते रहते हैं, बड़े प्रसन्न करते हैं ठाकुर जी को। फिर राधा रानी कहती है कि इनको तब उनका दर्शन भी होता है अष्ट सखियों के साथ में। फिर दोबारा माधवी गोपी उनको दक्षिण कोने में लेके जाती है, दोबारा स्नान कराती है, फिर नारद मुनि पुरुष शरीर प्राप्त करते हैं। उसके पहले राधा रानी उनको आदेश देती है कि आप अपने जो हमारे विग्रहों की जो पूजा अर्चा पद्धति है उसको लिखो, ग्रंथ लिखो यहाँ बैठकर। नारद मुनि कहते हैं कि हमको तो शाप है, दक्ष राजा ने दिया था कि हम किसी भी जगह 3 दिन के ऊपर रह नहीं सकते। वो कहते हैं कि दक्ष राजा का शाप जो है वो आपके लिए वृंदावन के लिए लागू नहीं है, ये हमारा घर है, हाँ पूरे विश्व के लिए है, वो भौतिक जगत के लिए आपको शाप दिया है लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ पर आपको वो 3 दिन का शाप लागू नहीं है, आप जहाँ जितना मर्जी उतना रहो। नारद मुनि बड़े खुशी से नाचते हुए यहाँ से उस दिशा में जाते हैं, जैसे मेरा हाथ है यहाँ पर, उस दिशा में नाचते हुए जाते हैं और वहाँ पर जाके निवास करते हैं। और वहां पर नारद कुंड है, नारद वन है, जहां पर नारद जी विराजते हैं उनका कुंड है, उसके किनारे उन्होंने भजन भी किया है और नारद पंचतंत्र का विधि जो ग्रंथ है उन्होंने वहां पर बैठ के लिखा है। नारद जी का निवास स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। तो एक लीला हो गई यहाँ की। फिर यहां पर जब वो आते हैं तो अशोक वन में बैठते हैं, अशोक वन के अशोक वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान में क्या देखते हैं कि अशोक वाटिका में जितने वृक्ष है वो सब गोपियां बनकर सज धज कर रास में भाग रहे हैं, रास में प्रवेश करने के लिए। नारद मुनि एकदम आश्चर्य होते हैं, आँख खोलते तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो वृक्ष भी गोपी बनकर भाग रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो वृक्ष हैं सब भगवान के परम संत और भक्त हैं, महात्मा हैं। तो इसलिए हमको वृक्षों का यहाँ पर आदर करना चाहिए। कोई वृक्ष सब भगवान के भक्त हैं, कोई योगी हैं, कोई भजन कर रहे हैं, कोई स्वयं गोपियाँ हैं, बाकी वृक्ष जो है सब वृक्ष कल्प वृक्ष तो है ही, यहाँ पर सब अपनी भक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प बिनने की लीलाएं संपन्न होती हैं। साथ साथ में इसी के जरा से पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पर उद्धव जी की बैठक है। उद्धव जी भगवान के परम भक्त थे, उनका कई भगवान से रिश्ता था, वो भगवान के चचेरे भाई भी हैं, वो द्वारका में भगवान के सेनापति भी रह चुके हैं, साक्षी लीला के भगवान के परम भक्त हैं। इतना उनका भगवान साथ सख्य है कि वो भगवान के साथ उठते बैठते खाते पीते हास प्रयास करते हैं, शिकार खेलते हैं, राज दरबार भी चलाते हैं और हर प्रकार से भगवान के निकट है वो। मतलब एक भक्त के लिए भगवान से और निकट क्या हो सकते हैं, भगवान इतने वो भगवान से निकट थे। और वो बड़े अपने मतलब बड़े प्रसन्न रहा करते थे, भगवान को हमेशा ले जाते थे हर तरह से। तो भगवान जब छोड़ के आए गोपियों को, वो द्वारका गए, मथुरा गए पहले, फिर द्वारका गए, राज बसाया वहाँ पर। मैंने पढ़ा एक जगह पर कि मथुरा नगरी जो थी वो पश्चिम दिशा में द्वारका तक फैली हुई थी, जो आज हम द्वारका कहते हैं वो मथुरा नगरी का हिस्सा है। आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, उसमें भगवान ने जब मथुरा नगरी बसाई और पश्चिम दिशा में गए तो मथुरा आज जहाँ पर है वहाँ से लेकर द्वारका जहाँ तक है वहाँ सब समुद्र के अंदर भी द्वारका है। हमारी जो द्वारका आज देखते हैं वो समुद्र के अंदर है, जो ओरिजिनल द्वारका है वो समुद्र में लुप्त हो चुकी है, समुद्र ने उसको कवर कर लिया है भगवान की लीलाओं को समाप्त होने के पश्चात। तो वहाँ तक द्वारका का विस्तार है और वहाँ पर भी राक्षस लोग पुकारते पुकारते आते थे युद्ध की ललकारते हुए, सुंदर वर्णन आता है उसका। तो मथुरा भगवान गोपियों को छोड़ के मथुरा गए, फिर द्वारका गए। तो गोपियाँ बहुत व्याकुल थी, जब वो देखते हैं कि उद्धव जी अभी सख्य लीला में बहुत उच्च स्थान पर गए हैं तो उनको अभी गोपियों की पाठशाला में भेजना चाहिए अगली डिग्री प्राप्त करने के लिए। हाँ, क्योंकि उनको बता दें कि इसके आगे कुछ है नहीं प्राप्ति, भगवान के विषय में और प्राप्ति क्या हो सकती है। इसलिए वो संदेश लिखते हैं और उद्धव जी को कहते हैं कि आप जाओ नंद ब्रज में जाओ और गोपियों से मिलो, सबको ब्रजवासियों को सांत्वना दो। तो बड़े वो ज्ञानी भी है ना, बड़े विद्वान और पंडित हैं, सब शास्त्र को जानते हैं, सभी योग विद्या सब विद्या को जानते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि वो प्लानिंग करें ना अपनी सेवा करने के लिए, कैसे सेवा की जाए। तो प्लानिंग करें कि मैं इनको योग सिखाऊंगा, क्योंकि दुखी लोग जो होते हैं वो योग करने से अपने मन को संभाल सकते हैं आसन करके प्राणायाम करके मन को काबू में कर सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम जो होता है ना, वो जब दीर्घ श्वास लेते हैं हम, वो अनेक प्रक्रिया होती है, उसके अंदर मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उद्वेग से और पीड़ा से यात्रा से भावनाओं के उद्वेग से हम उसको मुक्त कर सकते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हम जाके योगियों को गोपियों को योग सिखाएंगे, उनको शांत कर देंगे, उनको ज्ञान भी देंगे विरक्ति का, कैसे सब विरक्ति सब छोड़ देना चाहिए। जब आते हैं तो क्या देखते हैं, सब गोपियां ध्यान में बैठी हैं जमुना जी के किनारे। योग में क्या करते हैं हम लोग, अपना मन जो है भगवान के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तब हमारा मन जो है वो सब दुनिया में भटकते रहता है यहाँ से वहाँ, हाँ विक्षेप कहते हैं उसको, सब जगह भाग रहा है मन अपना। तो उसको वो योग के माध्यम से एक जगह बैठाने का प्रयास करते हैं, कहाँ पर, कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की भावना में। और गोपियां भी योग कर रही हैं, तो क्या कर रही हैं वो जो उनके मन में बसे हुए ठाकुर जी उनको भूलना चाहते हैं, इसलिए वो योग कर रहे हैं। बोले ये कौन सा योग होता है, हैरान हो गए उद्धव जी, अरे ऐसा भी कोई योग होता है, इतनी भगवान की गहरी भावना है, उसको कहते हैं अनुस्मृति, समाधि अवस्था कहते हैं उसको। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी अपने उपदेशामृत में अनुस्मृति नाम का टीका किया उन्होंने, उसमें वो बताते हैं कि कैसे पांच प्रकार का स्मृति कैसे होता है, उसमें अंतिम स्मृति जो है वो समाधि अवस्था कहते हैं उसको, निरंतर अनइंटरप्टेड डीप मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड, एक क्षण भी उसका भगवान का ध्यान उससे नहीं हट सकता है, उसकी क्वालिटी भी इतनी गहरी होती है। उस अवस्था में ये है और वो चाहते हैं कि हम उनको भूल जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे प्रिय प्रियतम है कि वो अपनी प्रिया को छोड़ के जाते हैं, सबको दुख के सागर में डुबा के जाते हैं, क्या क्या वादा करते हैं और दिल लगा के सबको पागल बना देते हैं और बाद में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे प्रियतम से हमको प्रेम नहीं करना है, हमको उनको भूल जाना है, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। वो दिन रात उनके विचार में है, रोज इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे, आ जाएंगे, कहाँ था दो दिन में आएंगे, उस वक्त आ जाएंगे। सुबह उठते हैं तो व्यंजन बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, विधान बनाते हैं, पुष्प मंडल बनाते हैं, पुष्प शैया बनाते हैं, निकुंज तय करते हैं कि यहाँ मिलेंगे, उनको यहाँ खिलाएंगे, यहाँ गाएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। फिर सब मालाएं तोड़ देते हैं, सब लड्डू का टुकड़ा कर देते हैं, छाती पीटते पीटते बेहोश होकर रात भर गिर जाती है, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही काम। ऐसे उन्होंने 100 साल तक किया। हाँ, संयम इसको कहते हैं। सबरी ने भी ऐसे किया था, कई हजारों साल तक, कई सैकड़ों साल तक उसने रामचंद्र जी का इंतजार किया था, रोज फूल सजाना, फूल निकालना, रास्ते में फूल बनाना, वेट करना कि आज ऐसे आएंगे। 85 साल की उम्र में फिर उनको, शायद मुझे एग्जैक्टली उम्र मालूम नहीं, बड़ी बूढ़ी अवस्था में, कई साल से, बचपन की अवस्था से लेकर जवान अवस्था, बूढ़ी अवस्था, सब अति बूढ़ी अवस्था में उनको एक दिन रामचंद्र जी आए, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि एक दिन आपको जरूर रामचंद्र जी आके आपका दर्शन देना है। आपकी सेवा है कि उसको सुग्रीव का जगह कहाँ है वो बताना, आपकी सेवा होगी। वो एक सेवा करने के लिए जीवन भर इंतजार करते रहे। वो यहाँ पर भगवान ने कहा था हम परसों आएंगे, परसों के वादे पर उन्होंने 100 साल तक हर रोज, 10 साल तक यहाँ लीला किया, 10 साल तक जो भी सेवा किया वो सेवा उन्होंने 100 साल तक करते रहे हृदय में, और उत्कट रूप में भगवान ने उनको भाव रूप में उनको संग दिया। जो संग उनका शरीर रूप से, वपु रूप में, रूप शरीर रूप से जो आनंद दिया, उससे कई हजारों लाखों गुना आनंद जो है गोपियों को उन्होंने भाव रूप में दिया। तो भगवान का संग का जो आनंद था, शरीर का संग का, उससे भी कई गुना आनंद गोपियों को विरह में प्राप्त हुआ है। तो ये जो पाठशाला है गोपियों की, उसमें भगवान ने उद्धव को भेजा। तो उद्धव जी नंदगांव गए तो उन्हें कहा कि घर कहाँ है नंद भगवान का? तो कहते कि दो नदियाँ बह रही ना यहाँ, इसके किनारे किनारे चले जाओ, नंद बाबा के घर पहुँचाओगे। बोला अच्छा, मतलब कौन सी नदियाँ हैं? बोले एक नदी नंद बाबा के अश्रुओं की है, एक नदी यशोदा मैया के अश्रुओं की है। जब से ठाकुर जी यहाँ गए हैं तब से उनके अश्रु बंदी नहीं हुए, निरंतर अश्रु बह रहे हैं उनकी आँखों से और नदियाँ बह रही हैं अश्रु। आप जाइए किनारे किनारे जाके मिलते हैं तो वो पूछते हैं क्या वो माखन भी खाते हैं, कोई उनको माखन खिलाते हैं, रात में उनको कौन सुलाते हैं? उनको पता नहीं कभी वो बड़े भी हो गए, राजा भी बन गए हैं। हाँ, माता तो अपने बालक को बालक ही समझते हैं ना। 50 साल का होने के बाद महाप्रभु जी की माता कितने साल की है?
95
ईयर्स की है। अभी भी डांटते हैं इनको, ये कुछ 74 साल के हैं लेकिन उनके लिए बालक ही है ये, है ना प्रभु जी? तो यानी बहुत साल डांट के हो गया होगा, अभी वो सारा सब बीमार है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस अवस्था में बालक छोड़ के गए थे उनको, वही अवस्था उनको याद है ना। उनको थोड़ी वो याद है कि अभी राजा बन गए, मुकुट पहनते हैं, अभी शस्त्र धारण करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, वो तो अपने कन्हैया को याद कर रहे हैं। अभी भी अगर आपके गांव की बात करने लगेंगे हम बचपन की, तो आप तुरंत इतने से हो जाएंगे मन से, है ना, एकदम भाव आपका बदली हो जाएगा। तो वैसे वो सोच रहे हैं कि कैसे माखन क्यों खिलाता है उनको, माखन खाने का उम्र गया उनका अभी, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कौन उनको सुलाता है, कौन गीत गाता है रात को, कौन उनकी देखभाल करता है, उनको हमारी याद भी आती है क्या? ऐसे बड़े प्रश्न करते हैं जिनके उद्धव जी का हृदय पिघलने लगता है उनके प्रेम से। तो वहाँ पर अनुभव लेते हैं, फिर गोपियों को मिलने जाते हैं। तो गोपियाँ जो है बड़े संकोच में है उस समय, तो उनको एक दूर जगह लेके जाते हैं, उद्धव क्यारी नाम की जगह है वो, बड़े जंगल के अंदर को एकांत में लेके जाते हैं, उनको आश्रम में बिठाते हैं और फिर अपने दिल की बात करते हैं उनसे। भगवान को गालियाँ भी देते हैं, निर्वचना भी करते हैं, बहुत निंदा करते हैं भगवान की, कैसे भगवान है ये, इनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, और फिर बीच में रोती हैं, फिर भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में आती है, फिर कुछ बोलती हैं, फिर कुछ कोसती हैं उनको। उनकी ये प्रेम की जो अति उत्कट अवस्था है, इसको उद्धव जी समझ नहीं सकते, क्या बात है, मैं क्या सोच के आया था इनके बारे में, और क्या इनकी अवस्था है। तो वो एकदम कन्विंस हो जाते हैं कि मुझे इनके चरणों की धूल चाहिए, मिलने चाहिए। लेकिन कैसे देंगी? वो तो गांव की लड़कियां हैं, बिल्कुल सरल सी हैं, सीधी सी हैं, उनका कोई पोजीशन नहीं है। मैं तो सेनापति हूँ, रथ में आया हूँ, और मेरा ऐसा ऐसा पोजीशन है, तो मुझे कैसे आप रज देंगी? वो संकोच करेंगी। वो तो उनकी रज प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, वो ये है कि मैं यहाँ पर एक तृण का पत्ता बन जाऊँ। उसको कहते हैं गुलमलता, मतलब ऐसे होता ना, चलते हैं तो कोई उतर ना ध्यान, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो बहुत, एकदम ऐसा हम देखते भी नहीं उसकी ओर, ऐसा एकदम यकश्चित होता है वो, एकदम इनसिग्निफिकेंट क्रीपर, उसको गुलमलता कहते हैं। तो जब मैं गुलमलता बनूंगा तभी ये गोपियां जब विहार करेंगी वन में तो सहजता से बिना संकोच उनके चरणों की रज इस पर पड़ती रहेगी और मैं वो प्राप्त करके जीवन में कुछ प्राप्त करने का भगवान की भक्ति में उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ, अभी आप सोच लीजिए जो भगवान के निकट की परम अवस्था में है, हाँ, हर पोजिशन जो आप लोग चाह सकते हैं भगवान के प्रति वो उसके पास अवेलेबल है, वो एकदम निकट भी है, सेनापति भी है, अधिकार है उसके पास, सब कुछ है उसके पास भगवान की भक्ति में आध्यात्मिक दृष्टि से भी, लेकिन वो सब छोड़कर वो यहाँ पर एक गुलमलता बनना चाहते हैं, जाते हैं वापस, संदेश देते हैं उनको, बहुत बड़ा वार्तालाप है वो भागवत जी में। नंदगांव में 7 और 8 दिन की लीला होती है, फुल रात 8-8 घंटे की, 8 दिन चलती है, इतनी लंबी कथा है ये। नंदगांव के जो लीलाएं हैं जो उसको सबसे उत्कट 2 प्रसंग हैं, एक प्रसंग जो है वो भगवान का मथुरा गमन, उसमें बहुत लंबी लंबी लीलाएं होती है वहाँ पर, सब रोते हैं नंदगांव के लोग सुनते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे दुखी प्रसंग है ना वो, नंदगांव छोड़ के भगवान मथुरा गए। और दूसरा प्रसंग है उद्धव का आना, उद्धव आके जो लीला करते हैं, उद्धव लीला जो है सबसे उत्कट अनुभव है नंदगांव के वासियों के लिए। संदेश देते हैं पूरा, आप भागवत जी में पढ़िए उद्धव जी का लीला, बहुत सुंदर है। फिर वो वापस जाते हैं द्वारका में, भगवान को संदेश देते हैं और फिर चलने लगते हैं, बोले मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं ब्रिज पे जाऊँगा और वहाँ पर तृण का पत्ता बनूंगा। मतलब भगवान का संग, अभी गोपियाँ यहाँ पर भगवान के संग के लिए तड़प रही हैं, वो नहीं आ रहे हैं, इनको संग उपलब्ध है एकदम, लेकिन ये छोड़ के जा रहे हैं गुलमलता बनने के लिए। क्या रहस्य है इसके अंदर? वो जो भाव जो गोपियों का है वो भगवान के संग में भी उनको उपलब्ध नहीं है, जो भगवान के विरह में जो उस जो भाव को अनुभव कर रही है, जो उनकी योग्यता है, इतनी परम श्रेष्ठ भक्ता है भगवान की, वो भाव उनको भगवान के संग रह के भी उपलब्ध नहीं है, तो वो भाव को ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना जो भौतिक स्थिति है, उच्च स्थिति है, उसको छोड़कर एकदम भौतिक दृष्टि से एकदम निम्न बनना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, दास दास अनुदास, जो भगवान का दासों का दासों का दासों का दास होकर नम्र बना हुआ है, तृणादपि सुनिचेना, वो तुरंत का पत्ता वो बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे नहीं एप्लीकेशन दिया तुरंत का पत्ता नहीं बने, वो यहाँ पर आए कुसुम वन में, उन्होंने तपस्या किया है। मैंने पहले भी आपको बताया तपस्या कैसी होती है, वो कुटू के आटे का लड्डू खाके और सबाजना खिचड़ी खाके, हाँ सामा के खिचड़ी खीर खाके उपवास नहीं होता है उनका, वो तो तुरंत के झाड़ से गिरते पत्ते खाते हैं, उपवास करते हैं। संतों का उपवास होता है तो व्रत होता है ना, बहुत बढ़िया होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है, वैसा तपस्या उन्होंने यहाँ पर किया है, क्या बनने के लिए? तृण का पत्ता बनने के लिए, और वो यही निवास करते हैं, यही लता पताओं में कुसुम उनमें, जय हो माता जी, श्री राधे श्याम, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर वो निवास करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मन की इच्छा पूरी कर ली है, तपस्या करके वो तृण का पत्ता बने हुए हैं, अपना ऊंचा सो कॉल्ड तथा कथित पद को छोड़कर वो यहाँ पर घास का पत्ता बने हैं। हाँ, बहुत मुश्किल बात है ये, हमारे को कोई कहा जाए कि आप भगवान आपको मिलेंगे, आप अपना धन दार सब कुछ छोड़ दो, तो थोड़ा सोचेंगे हम लोग क्या करना चाहिए, छोड़ू कि नहीं छोड़ू। इनको कोई संकोच नहीं था, सबसे उच्च स्थिति जिसका हम अपने जीवन में भी उम्मीद नहीं कर सकते या कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे उच्च स्थिति में वो थे ऑलरेडी, लौकिक दृष्टि से भी थे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी थे, लेकिन दोनों सो कॉल्ड तथाकथित स्थितियों को त्याग दिया और यहाँ पर आके तृण का पत्ता बने। तो हमको उद्धव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो निर्णय लिया उन्होंने, हाँ वैसे हमको भी शक्तियाँ देना, ऐसा जो कठोर निर्णय उन्होंने लिया कि यस मैं सब छोड़ दूंगा भगवान के उच्च भाव की प्राप्ति के लिए, सेवा भाव की प्राप्ति के लिए, हाँ उच्च पद की प्राप्ति के लिए नहीं, उच्च भाव सेवा में जो है उसकी प्राप्ति के लिए मैं ये सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ऐसा निर्णय लेने की शक्ति मुझे देना, ऐसे उद्धव जी से आप प्रार्थना करना। फिर यहाँ पर और एक सुंदर लीला हुई है, वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि भगवान जब अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं, अंतर्धान होते हैं भगवान, है ना, तो वो उद्धव जी को बता के जाते हैं कि आप मेरी पत्नियों को, जो 16,108 पत्नियां हैं, उसको आप ब्रिज में लेके जाना, क्योंकि वो बहुत विरह में होंगी उस समय, बहुत रोती रोएंगी, बहुत कष्ट होगा उनको, पीड़ा होगी, यातना होगी, तो उस समय उनको रिझाने के लिए, मतलब उनको सहलाने के लिए, सांत्वना के लिए आप ब्रिज में लेके जाना। तो वो राजा परीक्षित जो है उनको बोलते हैं, और जो प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, उसके पुत्र जो हैं वज्रनाम, जिनको राजा पर, एक मिनट जगह देना, जो उनका सॉरी जो उनका वज्रनाम है, उनको राजा परीक्षित ने अपने नेतृत्व में ब्रजमंडल का राज सौंप दिया था, और उनकी सेवा थी कि भगवान के जहाँ जहाँ लीला स्थल है वहाँ पर विग्रहों को स्थापन करके उनकी पूजा अर्चा सब स्थापन करना उनका कार्य था। तो जो भी ब्रज को बसाया है वो बज्र नाम ने बसाया है, और ये बज्र नाम की समाधि जो है वो करेला चंपकलता के गाँव में है, क्योंकि उनको बरसाना नंदगांव बहुत प्रिय था, इसलिए उनकी इच्छा से उनकी समाधि जो है चंपकलता गोपी के गांव में करेला यानी कि करहपुर वन इसमें बनाया गया है, इसमें है। ये उसका प्रमाण है कि उनको बहुत प्रिय था वो अंतरंग क्षेत्र जो है ब्रज का। तो फिर राजा परीक्षित और वज्रनाभ भगवान के 16,108 मैं कहूँगा 16,107 क्योंकि जमुना जी यहीं थी, तो सब पत्नियों को लेकर आते, बहुत रो रही है वो, इतना भगवान को अंतर्धान होने के बाद में इतना रो रही है, विरह में है वो। वो ब्रज में आती हैं, जमुना जी को देखते हैं, जमुना जी भगवान की पांचवी पत्नी है, पंचम पत्नी है भगवान की। जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था भगवान के आदेश से, तो विश्राम कर रहे थे, तो जमुना जी वहाँ प्रकट होती है और भगवान को स्वीकार करते हैं और भगवान की पत्नी बन जाती है जमुना देवी। तो जमुना देवी भगवान की एक विशेष पत्नी है, क्योंकि ब्रजवासी नहीं है, विशाखा देवी का अवतार है वो, मतलब विशाखा देवी का विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ विशाखा देवी। तो जमुना देवी देखते हैं कि उमड़ रही है, इनकी लहरें इतनी उमड़ रही है आनंद से, तो पूछते हैं तुम हमारी सहचरी हो, हमारे सौत हो, और भगवान ने अपना लीला समाप्त करके अंतर्धान हो गए, हम इतने दुखी हैं, आप इतने खुश कैसे हैं? तो कहते हैं कि ब्रजवासियों को कोई विरह नहीं है, एक दृष्टि से तो विरह में भी है तो वो हृदय रूप में भाव रूप में भगवान का संग करते रहते हैं। तो राधा रानी की कृपा ही है, राधा रानी की कृपा ऐसी है कि विरह में होते हुए भी दिव्य आनंद का अनुभव यहाँ पर हमेशा होते रहता है, जैसे गोपियों को 100 साल तक भगवान ने दिया। तो फिर भी वो कहते हैं इसका रहस्य समझने के लिए आप कुसुम वन जाओ, क्योंकि ये इतनी गहरी बात करती है जमुना देवी कि वो थोड़ा समझ नहीं पाती उसको। लेकिन आप कोई बात नहीं, आप कुसुम सरोवर जाओ, वहाँ उद्धव जी मिलेंगे आपको, आपको सब ये रहस्य समझाएंगे। तो फिर सभी सखियों को सभी पत्नियों को लेकर वज्रनाभ जी यहाँ पर आते हैं, परीक्षित जी चले जाते हैं, और यहाँ पर वो आते हैं तो उनको आदेश रहता है कि आप यहाँ पर उद्धव जी को प्रकट करना है तो आपको नाम संकीर्तन करना होगा। नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करेंगे, गायन करेंगे, तो गुलमलताओं से उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे, फिर आपको कृपा करेंगे। तो हम लोग सब लोग उसी याद में नाम संकीर्तन करेंगे, इसमें 2 लाभ होंगे, जो यहाँ पर हुआ है वो हम करेंगे और आप सबकी नींद भी उड़ जाएगी। जय श्री राधे। आगे
राधे राधा रमण हरि गोविंद जय जय करो करो राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे जय गोविंद जय गोपाल सबकी आवाज नहीं आ रही है जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल पुकारो दीन दयाल को पुकारो दीनानाथ को पुकारो केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल करो श्याम सुंदर कन्हैया लाल हे श्याम सुंदर कन्हैया लाल हा गिरिवर धारी नंद दुलार हे गिरिवर धारी नंद दुलार नंद दुलार प्रभु नंद दुलार हे नंद दुलार प्रभु नंद दुलार केशव माधव दीन दयाल हे केशव माधव दीन दयाल हे जय गोविंद जय गोपाल बोलो 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 हा केशव माधव दीन दयाल ऐसे पुकारो कि यहाँ पे आपके सामने प्रकट हो जाएगी जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद हे जय गोविंद जय गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे हरे करुणामयी राधे दयामयी राधे गोविंद